आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ये रिकंसिलिएशन सप्ताह है गैर स्वदेशी लोगों के लिए आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के बारे में सुनने और जानने का समय। आज SBS एग्जामिन्स के इस अंश में हम रिकंसिलिएशन में बहुसांस्कृतिक समुदायों के महत्व को देख रहे हैं और मैं हूं अनीता बरार।
I came to Australia and I quickly learned about the plights of the indigenous people.
Alfred Bragg जब किशोर थे तब इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। उस समय 2017 में पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के हैरिसन आइलैंड जो नूंगू नाम में मैटूजी आरोपी के नाम से जाना जाता है उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। द्वीप पर पिछले विरोध प्रदर्शनों में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा नूंगू लोगों को 1.3 बिलियन का नेटिव टाइटल प्रस्ताव, दूर दराज के आदिवासी समुदायों और पारंपरिक भूमि अधिकारों को बंद करने पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन इस बार यानी 2017 में प्रदर्शनकारी इस बात पर विरोध कर रहे थे कि राज्य सरकार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बेघर लोगों की मदद करने के बजाय पहले अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों का सपोर्ट कर रही थी।
I didn't know that as an immigrant, you are also a benefactor of the dispossession of Australia's land. When I became Australian, that was not taught in the context of what it means to be Australian. I didn't truly understand the extent of what the challenges were until I started working with Clinton Prior, and that was a watershed moment for me.
Matagaru pradarshankariyon mein ek Clinton Prior us samay 27 varsh ke the. Wo batate hain ki us samay unhone nirnay liya ki wo Perth se Canberra tak paidal jayenge aur is ladai aur virodh pradarshan ko jari rakhenge.
West Australian Police, they wanted us to move on and to stop the protest and just didn't want to give up the fight. And that's when I said to myself, you know what, I'm going to walk from Perth to Canberra and I'm going to continue fighting and protesting.
Udhar Alfred Clinton ki baat ko saajha karne ke liye madad karna chahte the, isliye unhone Clinton se sampark kiya. और क्लिंटन की यात्रा को डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ ये दोस्ती गहरी भी होती गई। एक साल के बाद क्लिंटन एल्फ्रेड के साथ कैनबरा पहुंचे। क्लिंटन ने राजनेताओं और साथी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकें की, हालांकि वे निराश होकर कैनबरा से चले गए।
But truthfully, the walk inspired millions and millions of people around the country and around the world. It takes someone just to stand up for what they believe in and follow their heart, and people can see that.
Clinton ka kehna hai ki reconciliation ka samarthan karna mahatvapurn hai.
It's about bringing Indigenous and Torres Strait Islanders and Australian people together and to build a bridge where it's a way for all of us to move forward as a multicultural country.
ऑस्ट्रेलिया में रिकंसिलिएशन की बात करें तो 26 जनवरी 1938 को पहला शोक दिवस विरोध प्रदर्शन हुआ था। 1996 में काउंसिल फॉर एबोरिजिनल रिकंसिलिएशन ने ऑस्ट्रेलिया का पहला नेशनल रिकंसिलिएशन वीक शुरू किया था। योटा योटा व्यक्ति इयन हैम का कहना है कि ये प्रक्रिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग दिखती है।
Reconciliation has moved from being, if you like, an issue just kind of sat by itself to now having to juggle with and being seen in the context of a whole bunch of other things going.
ऑस्ट्रेलिया के वॉइस टू पार्लियामेंट जनमत संग्रह के बाद बहुसांस्कृतिक समुदायों के साथ जुड़ने के बाद इयन ने पाया कि दो दृष्टिकोण थे। एक तो कुछ प्रवासी समुदाय जो उन जगहों से आए जिन जहां पर उन पर अत्याचार किया गया था, तो वो मूल रूप से समझते थे कि ये किस बारे में था, और वहीं ऐसे प्रवासी समुदाय भी थे जो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की सुधार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आए थे और कहते थे कि वो खाली हाथ आए और उन्होंने तरक्की की, तो आदिवासी लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
Some migrant communities who are very much supportive of the propositions of the referendum because they come from places where they had been a minority that had been oppressed. And while they weren't completely au fait with the detail of the Australian story, as it relates to Aboriginal and non-Aboriginal Australians, they fundamentally understood what this was about and saw how can these people, as a minority, particularly those who'd been here for so long prior to colonisation, how can they be treated this way? Equally, though, there were migrant communities who'd come from different backgrounds, perhaps where they weren't subject to oppression, weren't minorities, but had come to Australia seeking an uplift in their economic and social positioning, which is a fair enough thing, who perhaps didn't appreciate it. And I recall there were times when people said, I came here with nothing, which really wasn't nothing, and I've got to where I am. Why can't Aboriginal people do it?
Ian कहते हैं कि reconciliation के लिए आपको प्रवासी समुदायों की जटिलता को समझना होगा. Shankar Kesinathan, National Center for Reconciliation, Truth and Justice में सहायक वरिष्ठ रिसर्च फेलो हैं.
At the heart of reconciliation is actually allyship. We become a part of this Australian story, which brings with responsibility about how we build relationships going forward.
केसी नेथन श्रीलंका में हुए गृह युद्ध से भागकर ऑस्ट्रेलिया आए. एल्फ्रेड की तरह ही शंकर का मानना है कि बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए सामंजस्य में शामिल होना महत्वपूर्ण है. वो कहते हैं कि कई प्रवासी और शरणार्थी समुदाय बेदखली, जबरन विस्थापन, सांस्कृतिक विलोपन को समझते हैं, लेकिन प्रथम राष्ट्र के लोगों की आपबीती के साथ संबंध नहीं बना पाते.
Many migrant and refugee communities understand dispossession. We understand forced displacement. We understand cultural erasure. But we don't always make that link between our stories and our histories of our diaspora and the stories of now, our First Nations people. So I think once that connection is made, it becomes a powerful foundation for ongoing mutual support and allyship that I think is at the core of genuine friendships.
Rachel Knowles, Nicola Maxgill और Olivia Diorio द्वारा निर्मित इस अंश को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने. अधिक जानकारी के लिए sps.com.au/sps-examines पर जाएं.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.